जय श्रील प्रभुपाद की
जय।
श्री श्री रुक्मिणी द्वारका देश की
श्री
श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
श्री
जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चिरभाव तिथि की। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज विशेष अतिथि हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोभाव है। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि जो महान आचार्य हैं उनको इस जगत में जब वो महान आचार्य आते हैं तो भगवान की आज्ञा के अनुसार वही जगत में आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कौन महाजने पाठाइया दिल तुम्हें तव निज जन कौन महाजने पाठाइया दिल तुम्हें। कि हे कृष्णा आप इतने अधिक दयालु हो गए हो इस भौतिक जगत के जीवों के प्रति कि आप अपने स्वयं के जो निज जन हैं सबसे जो नजदीक के जो पार्षद हैं उनको इस जगत में भेजते हैं केवल बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो वैष्णवगण इस जगत में आना और इस जगत से चले जाना ये दोनों ही दिव्य हैं। हमारे जैसा नहीं है क्योंकि हम इस जगत में आते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्तये। भागवतम कहता है कि हम अपने कर्मों के भोग करने के लिए या कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उसके कारण इस संसार में आते हैं और फिर इस संसार से वापस जाते हैं। अलग अलग योनियों में हम भ्रमण करने लगते हैं। लेकिन जो ऐसे महान आचार्य हैं भगवान के जो निजी पार्षद हैं जिनको कर्म बंधन नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में एक ही चीज कहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्युनाय संगे आए से न संगे जाए न तथाय। कि भक्तों का जो जीवन है वो भगवान के संग में है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसे आचार्य हैं उनका इस जगत में आना और इस जगत से चले जाना दोनों भी दिव्य हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अपने बारे में जब वर्णन करते हैं जन्म कर्म च न दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः। कि हे अर्जुन मेरे जो जन्म है मेरे जो कार्यकलाप है वो दोनों ही दिव्य है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण चेतना से सदैव पूरित है भगवान के जो नित्य अनुचर हैं, उनका जन्म ग्रहण करना और इस जगत में कार्य करना वो भी दिव्य है। इसलिए प्रभुपाद का जो कार्यकलाप है उसको लीलामृत कहा जाता है। भगवान को ही लीलामृत शब्द या लीला शब्द यूज किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं कि भगवान के कार्यकलाप जैसे दिव्य है, उसी के समान उनके भक्तों के कार्यकलाप भी दिव्य होते हैं, क्योंकि अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाहि, कि भगवान के भक्तों को ना जन्म है ना मृत्यु है। संगे ऐसे ना संगे जाए न तथा, वो भगवान के संग आते हैं और भगवान के साथ वापस चले जाते हैं। धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कभु नहे, पद्म पुराणे ते यहां व्यक्त करी कहे। तो वास्तव में पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है, जिस श्लोक का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। तो ऐसे जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव मनाना और तिरोभाव मनाना हमारे जैसे भक्तों के लिए या साधकों के लिए परम आवश्यक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्तों के आविर्भाव में और भक्तों का जो तिरोधान है उसमें एक भक्त को बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम सब साधक हैं और साधक सदैव भाव की आकांक्षा करता है। तो साधक जो है हमेशा भगवत भाव को चाहता है, प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वास्तव में भगवत प्रेम के जो भाव हैं वो भक्त के हृदय में है। तो ये जो तिरोभाव और आविर्भाव में हाँ हमें भाव की प्राप्ति हो सकती है, यदि हम ऐसे महान आचार्यों के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनके कार्यकलापों का वर्णन करते हैं और गंभीरता से उन कार्यकलापों पर मेडिटेट करते हैं या उन कार्यकलापों को बड़े ही सरलता के साथ श्रवण करते हैं। दोनों दिन एक समान है, वैष्णव का करना और वैष्णव का तिरोभाव होना। वैष्णव का जन्म ग्रहण करना क्या है हमारे लिए? तो जो वैष्णव का जन्म है वो सुखदायी है, लेकिन जब वैष्णव इस जगत से अप्रकट हो जाता है तो हमें दुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस वैष्णव की जो शारीरिक सेवा है, वको सेवा है, हाँ उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आज तिरोभाव तिथि है, तो हम कुछ समय के लिए उनके जीवन के जो कार्यकलाप हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद को जब पूछा जाता था कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद कहते कि मैं क्या बताऊं, हाँ मेरे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में वो कौन है? इज अ वैकुंठ मैन, हम कहते थे कि वो तो वैकुंठ के व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं, आध्यात्मिक जगत के व्यक्तित्व हैं। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस जगत में अवतरित होते हैं 1874 में 6 फरवरी, और जैसे हम जानते हैं कि वास्तव में इस इस्कॉन आंदोलन की जो नींव है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने रखी थी। जैसे हर एक आचार्य होता है तो आचार्य का एक लक्षण है विजनरी, विजनरी विजन के बिना आचार्य बन नहीं सकता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो महान विजनरी हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, एक समय आएगा कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन अलग अलग देशों के लोग आएंगे और नवद्वीप मायापुर में बंगाल के लोगों के साथ मिलकर जय सच्चिदानंद गौर हरि का उच्चारण करेंगे और हरि नाम का गान करेंगे, एक दूसरे का आलिंगन करते हुए। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी महान विष्णवी आचार्य है, और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक भक्त हमें दिए हैं, एक आचार्य दिए हैं, और जिन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा, नच तारा सहस्रशः एक चंद्र तमो हन्ति, एक जो चंद्रमा है वो अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, और नच तारा सहस्रशः हजारों हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं कर पाते। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद को प्रदान किया, और श्रील प्रभुपाद ने हमें महत्वपूर्ण आंदोलन को खड़ा किया है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जगन्नाथपुरी में प्रकट होते हैं। जब उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, तो जब उनका जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे भक्ति विनोद ठाकुर, और जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे। जगन्नाथ मंदिर में उस समय बहुत ही अव्यवस्था थी। जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां निवास करते थे, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते मंदिर के अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर वहां के लोकल लोगों ने मंदिर के अंदर एक कुत्ते का मंदिर भी बना दिया। छोटे छोटे मंदिर है ना, तो वहां एक मंदिर बनाया लिटरली कुत्ते का मंदिर, जिसमें कुत्ते का डेटी था। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए, तो इनके पास सारा अधिकार था, अंग्रेजों ने इनको पूरा अधिकार जगन्नाथ मंदिर का प्रदान किया था। तो उन्होंने सुव्यवस्था निर्माण की, वहां उन्होंने सिक्योरिटीज और टेम्पल को तोड़वाया और बाहर कर दिया। तो कई सारे लोग ईर्ष्यालु हो गए और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति द्वेष भावना रखने लगे। वहां के जो राजा थे गजपति, उन्होंने क्या किया, मंदिर का जो धन दान आदि में आता था, कई हजारों रुपए अपनी सेवा के लिए ले जाते थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला कि ये मंदिर का भगवत सेवा में जो इस्तेमाल होने वाला धन है, उसका इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, तो उन्होंने राजा को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, जो कृष्ण का धन है वो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। तो उस राजा ने एक महान यज्ञ किया, मारण यज्ञ, जिसमें हर रोज वो होम करते थे, कई सारे तांत्रिकों को बुलाकर, और जिसके द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर को मारना चाहते थे। तो उस आखिरी जो यज्ञ था, उसमें जैसे ही आहुति डाली, तो उससे भक्ति विनोद ठाकुर मरे नहीं, राजा का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ की सेवा के लिए बहुत ही तत्पर थे, लेकिन साथ ही साथ उनके पास जो सरकारी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसके कारण वो बहुत अधिक प्रचार या चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको आगे नहीं बढ़ा पाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि ने बहुत ही बड़े लेवल में शुरू किया था, लेकिन 300-400 सालों के बाद ये आंदोलन ऐसा हुआ कि कोई चैतन्य महाप्रभु भी थे लोग भूल गए थे, इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को भूल गए थे। चैतन्य महाप्रभु के कुछ फॉलोवर बचे थे, जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहते थे, वो केवल सहजिया भक्त थे। सहजिया वो लोग जो शास्त्रों को स्वीकार करेंगे नहीं, और अपने मनगढ़ंत ढंग से चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के वाणी का आचरण करते थे। वो केवल बोलते थे अपने मुख से, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि कुछ भक्त होते हैं जो अपने मुंह से चिल्लाते रहते हैं, क्या कहते हैं, गौरा रामी मुखे बोलने नहीं चले। कुछ होते कि वो कहते हरि बोल, मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, लेकिन गौरार आचार, गौरार विचार, लयले फल फले, लेकिन वो लोग गौरांग महाप्रभु का जो आचरण है, गौरांग महाप्रभु की जो शिक्षा है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। तो उस समय ऐसे कई गुरु थे, वो कहते थे हम महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, हम कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और हम स्वयं कृष्ण है एक प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, केवल रास रचाएंगे। कई सारे स्त्रियों को बुलाकर अनैतिक संबंध आदि रखते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका तिरस्कार करते थे कि ये उचित नहीं है, ये सब नीच है, गिरे हुए लोग हैं। तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस महाप्रभु की शिक्षा को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं था। लेकिन एक महान आचार्य का उदय हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर का। जब जगन्नाथपुरी से पहले भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में थे, वहां से वो जब कटक ओडिशा में वो गए और ओडिशा में उन्होंने पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया था, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, इस आंदोलन के बारे में और विस्तार से समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने पूछा कौन से ग्रंथ हैं जिसको स्वीकारना चाहिए। तो कुछ वैष्णव के द्वारा उनको पता चला कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की पुनर्स्थापना करनी है तो चैतन्य चरितामृत को ढूंढना होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को ढूंढा, वो भी पूरा नहीं था, कुछ चैप्टर्स उसके गायब थे, कुछ श्लोकास गुम हो गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस ग्रंथ को लेकर राधा कुंड आते हैं और जो पुरानी प्रतियां भक्तों के पास पड़ी थी उसके साथ अपने ग्रंथ को मिलाते हैं और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं और फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं। और एक ही विचार उनके जीवन में था कि किस प्रकार से महाप्रभु के आंदोलन की पुनर्स्थापना करना। जैसे महाप्रभु के जो पार्षद अच्छे गोस्वामी, वो वृंदावन आए और वृंदावन का उन्होंने पुनर्निर्माण किया, वृंदावन की पुनर्स्थापना की। उसी प्रकार से ये जो महाप्रभु का आंदोलन है उसकी पुनर्स्थापना वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने की। और जगन्नाथपुरी के जो दिन है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि वहां मुझे वैष्णव का संग था, शास्त्र अध्ययन था, भगवान नाम लेने का मौका था। तो जब ऐसे कई दिन बीतते हैं जगन्नाथपुरी में, तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आते हैं और वो कहते हैं कि हे भक्ति विनोद, मैंने तुम्हें यहाँ ये सब कार्य करने के लिए, लीगल मैटर्स हैंडल करने के लिए नहीं बुलाया। जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में मैंने निवास इसलिए प्रदान किया है कि जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है उसको जागरूक करो, पुनर्स्थापना करो। ये सुबह उठते तो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो एकाकी आमार नाहीं पाए बल, मैं अकेले हूं, मुझमें कहां शक्ति है कि महाप्रभु का इतना दिव्य बड़ा आंदोलन में पुनर्स्थापना करूं। तो ऐसे आइडियल जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो गृहस्थ थे, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की। क्या प्रार्थना है, अरे वास्तव में गृहस्थ के लिए प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ, मुझमें तो वो सामर्थ्य नहीं है, मुझमें वो शक्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करो, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो महाप्रभु के आंदोलन की पुनर्स्थापना कर सकता है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में कर सकता है। भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करते हैं और उनकी इस प्रार्थना से वास्तव में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की कृपा से उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि वैवाहिक जीवन का लक्ष्य क्या है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पत्नी क्यों चाहिए जीवन में, क्योंकि पुत्र चाहिए। फिर पुत्र क्यों चाहिए जीवन में, पुत्र पिंड प्रदायते। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं जब शरीर त्यागूंगा तो ये लोग पिंड आदि करते रहेंगे, क्योंकि पिंडदान आदि करने से जो हमारे पूर्वज हैं वो यदि नारकीय स्थिति में है तो वहां से उनको अच्छी गति मिलती है, अच्छा शरीर आदि मिलता है, इसलिए व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में पुत्र चाहिए ताकि वो पिंडदान आदि की क्रिया करे। लेकिन वैष्णव ये सब चीजों से चिंतित नहीं है। वैष्णव पुत्र क्यों चाहता है कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो नियुक्त हो जाए, चैतन्य महाप्रभु के जो आर्मी है, सेना है, उसका एक अंग बने। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। और वास्तव में जो भी चीज भगवान जगन्नाथ से निकलती है या प्राप्त होती है तो वास्तव में प्रसाद है, लेकिन उस प्रसाद को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, विमला देवी। वहां जो पार्वती है, पार्वती देवी है, जिनका नाम विमला देवी है। तो विमला देवी को जो भी भगवान जगन्नाथ भोगा ग्रहण करते हैं तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले वो अधिकार विमला देवी को मिलता है जब वो ग्रहण करती है। उसके बाद सारे जगत को जगन्नाथ का प्रसाद बांटा जाता है। तो ये पुत्र रूप में जगन्नाथ से प्राप्त हुए थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये किसका प्रसाद समझा? विमला देवी का प्रसाद। हाँ, विमला देवी एक गोपी है, गौड़िया कहते हैं वृंदावन में। तो विमला देवी का प्रसाद स्वीकारा और इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद उन्होंने रखा। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उन्होंने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर को कि हमारे इस वंश में ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो बहुत ही बड़ा कार्य करेगा। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ तो उस समय उनके शरीर में सारे जो महापुरुष के लक्षण हैं वो प्रकट हो रहे थे। और धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े होते हैं, बल्कि हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब बालक थे, अभी कुछ ही महीने के थे, तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। भगवान नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा, अरे मैंने पुत्र दिया है भक्ति विनोद ठाकुर को, मेरा विशेष पार्षद है, मेरा भक्त है, तो मैं उसको देखना चाहता हूं। भगवान सदैव भक्तों को देखने में आनंद की अनुभूति करते हैं और भक्त सदैव भगवान को देखने में आनंद की अनुभूति करता है। तो भगवान जगन्नाथ के रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ जा रहा था गुंडीचा मंदिर की ओर और भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है वो बड़े जो ग्रैंड रोड है वो उसी में था, रोड के साइड में था। जब ये रथ गया तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने वो रथ रुक जाता है। जैसे वो रथ रुकता है, बल्कि दो या तीन दिन के लिए वो रथ हिलता नहीं, जैसे रथ रुक गया तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो पत्नी है वो अपने इस नए जन्मे हुए बालक को ले आती है जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए। वो मैजिस्ट्रेट की पत्नी तो कौन उसको रोक सकता है, सीधा जगन्नाथ के चरणों में पहुंचती है। और भक्ति सिद्धांत महाराज विमला प्रसाद छोटे थे, उनको उनके चरणों में बैठ के रखती है तो जगन्नाथ के गले से हार गिर जाता है टूटकर, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गले में एक प्रकार से बॉडी पर गिरता है और पूरा कवर्ड हो जाता है उनका जो अंग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को एम्पावर कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं जगन्नाथ देव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन से ही उनके कार्यकलापों से समझा जाता है कि वो कितने महान भक्त थे। जब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णवों को बुलाया और उनके अन्नप्राशन संस्कार में उन्होंने उसके बाद कई सारी चीजें रखी उस बालक के सामने। भागवतम है, जगन्नाथ का प्रसाद है और बहुत सारी वस्तुएं रखी और कहा कि जाओ विमला प्रसाद, जाओ पकड़ो, तुम्हें क्या अगर चाहिए। ये विमला प्रसाद छोटे से बच्चे थे, अभी तो अपने घुटनों में ही चलते थे, वो गए और जाते उन्होंने श्रीमद् भागवतम को पकड़ा और अपने छाती से लगा लिया। छाती से श्रीमद् भागवतम को छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि श्रीमद् भागवतम और कृष्ण ये दोनों अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण का शब्दावेश अवतार है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत अधिक दृढ़ थे अपने बचपन से ही। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जब ऑफिस से आए अपने ऑफिस कार्य से तो कुछ मैंगोज आम लेके आए, तो उन्होंने वो आम अपने घर के टेबल में रखे कि ये छोटे से 4 साल के थे, 4 साल के थे और ये गए और उन्होंने आम को खाना शुरू कर दिया। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे ये आम ये भोग लगाए हुए थे कि नहीं? विमला प्रसाद कहते नहीं। तो तब से उन्होंने क्या किया, आम खाना उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं इससे आगे कभी भी आम को खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं कृष्ण का अपराधी हूं, कृष्ण को भोग लगाए बिना मैंने इसको स्वीकार किया है। ये भावना इतने छोटे आयु में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने थे, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन से ही महान वैष्णव के जो लक्षण हैं वो प्रकट कर रहे थे, और उनके जो पिता हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने उनको तुलसी की माला दी थी बचपन में ही, नरसिंह मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र का वो जप किया करते थे। जब वो बड़े हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो वो जब एक बार कोई किताब पढ़ते थे तो उसको बार बार रिपीट नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे दोबारा। इसलिए उस समय ऐसा कहा जाता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो शिष्यगण हैं, जब बाहर के जो महान विद्वान लोग थे भारत के, वो सब कहते थे कि उस समय का भारत में सबसे बड़ा विद्वान कोई था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। वो चलते बोलते इंसाइक्लोपीडिया थे, एक बार ग्रंथ को पढ़ेंगे तो दोबारा नहीं पढ़ते थे, और आप 10 साल के बाद उनको पूछोगे उस ग्रंथ के पेज का पैराग्राफ मुझे बताओ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत तेज गति से उसको रिसाइट करके बोल सकते थे। इतने अप्रतिम उनके अंदर विद्वत्ता थी, एक ही श्रुति धर्म एक बार वो सुनते थे तो वो याद रहता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं उनको, वो कहते हैं कि मैं एक लाइन को नहीं पढ़ता, मैं एक पैराग्राफ को नहीं पढ़ता, मैं सीधा क्या करता हूं उस बुक को पढ़ लेता हूं, या मैं उस एक व्यक्ति के द्वारा पूरे कम्युनिटी को पढ़ लेता हूं। इस प्रकार का उनके अंदर विशेष योग्यता थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अंदर। और वो विशेष रूप से जो सहज या है, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है, लेकिन वो कहते कि मैं महाप्रभु का हूं लेकिन महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों से वो बहुत अधिक उनके प्रति बहुत अधिक क्रोधित हुए हुआ करते थे। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर के घर में जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े जो प्रसिद्ध बाबा जी हैं, जिनको सारा जगन्नाथपुरी और बंगाल आदि मान सम्मान मिलता था, वो आए थे भक्तिविनोद ठाकुर को मिलने के लिए। वो आए और देखा कि सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया। वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। ये जो बालक यंग थे, तो वो भक्ति सिद्धांत चले गए आकर रूम में, तो भक्ति विनोद को कहते कि भक्ति विनोद तुम्हारा पुत्र मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मेरा जो बेटा है वो सहज यंग को प्रणाम नहीं करता है। तो वो बिल्कुल गुस्सा हो गए। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत अधिक ये थे, दृढ़ थे चैतन्य महाप्रभु के सेवा आदि में। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज संस्कृत कॉलेज आदि में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, लेकिन फिर भी सदैव वो दो ग्रंथों का अध्ययन करते थे। जो उनका स्टडी टेबल था, उसकी जो ड्रॉवर थी, उसमें वो हमेशा दो ग्रंथों को रखते थे, क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, किसी ने पूछा कि बाबा जी महाराज बताइए बताइए कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सरल साधन क्या है, क्या उपाय है कि सरलता से कृष्ण प्रीति अनुकूल कर सकते हैं? तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए दो आना, दो रुपए काफी है। किसी ने पूछा क्यों? बहुत कम ये था, लेकिन आना तो पता ही नहीं होगा अभी क्या है, चार आने 25 पैसे वगैरह। तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आपके पास दो आने होने चाहिए या दो रुपए होने चाहिए, आप जाओ और मार्केट में जाओ और नरोत्तम दास ठाकुर के दो ग्रंथ खरीदो, एक था प्रार्थना और दूसरा था प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दो ग्रंथ काफी हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने स्कूल डे में या कॉलेज डे में अपने ड्रॉवर में हमेशा ये दो ग्रंथ रखते थे, और सबको लगता था कि ऊपर से बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ते थे? रूप गोस्वामी या फिर नरोत्तम दास ठाकुर आदि के ग्रंथ पढ़ा करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब अपने कॉलेज डे में उन्होंने एक सभा बनाई, इसको कहते चीर कुमार सभा, चीर मीन्स लंबा शासन, कुमार मीन्स ब्रह्मचारी रहना, सभा मीन्स गैलरी, उसको ऑगस्ट असेंबली उन्होंने दूसरा नाम दिया था। तो उसमें सारे जो युवक है वो सारे इकट्ठा किए थे और सबने व्रत लिया था कि हम बस आजीवन क्या रहेंगे, कुमार रहेंगे। तो बाद में देखा गया जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वो चिर कुमार सभा में केवल एक ही व्यक्ति बचे, वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हम बाकी सारे चले गए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो वास्तव में नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और जब उनकी आयु 31 साल की हुई और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने उजागर किया था, पूर्व रूप से स्थापित किया था नवदीप में मायापुर में योगपीठ के रूप में। तो वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने 31 साल की आयु में एक यज्ञ करना शुरू किया और वो यज्ञ था, यज्ञ क्या था वास्तव में? शतकोटि नाम यज्ञ। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्मजाल जन्म सार्थक करे कर उपकार कर पर उपकार, कि जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाए, हम सबसे पहले अपने जन्म को सार्थक करे और साथ ही साथ दूसरों पर परोपकार करे। तो उन्होंने अपने 31 साल की आयु में ये यज्ञ शुरू किया, शतकोटि नाम यज्ञ, जिसमें वो हर रोज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज योगपीठ के सामने उन्होंने कुटिया बनाई। अभी कोई व्यक्ति भजन करने जाता है धाम में तो कुटिया नहीं बनाता, कोठी बनाता है सीधा, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास वो सामर्थ्य था, कोठी क्या महल बना सकते थे वहां, लेकिन उन्होंने कोठी बनाया, कुटिया बनाई और उसके अंदर वो रहने लगे। और वो घास की कुटिया थी जिसमें हर रोज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 लाख नामों का जप किया करते थे। और कभी कभी बारिश भी होती थी, छत उसकी गिरने लगती थी, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक छाता भी रखा था और वो छाता वो रखते थे अपने सर में, बारिश गिर रही है लेकिन अपना ये जो शतकोटि नाम यज्ञ है उसमें बाधा या रुकावट लाने नहीं देते थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो गौरांग का विग्रह है उसको अपने सामने रखा था और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। और केवल दिन में एक बार प्रसाद ग्रहण करते थे, वो भी खिचड़ी। और उन्होंने ये जो यज्ञ है 10 साल तक कंटिन्यू किया। उन्होंने 9 साल 10 महीने ऐसे कुछ लगभग 10 साल तक उन्होंने 1 अरब नामों का उच्चारण किया था। 10 साल के लिए कंटिन्यूअसली रोज 3 लाख नामों का जप करना और अपने स्थान को कभी छोड़ना नहीं, उस नवदीप धाम को वो छोड़कर चले नहीं गए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिनका जो अनुराग है विशेष रूप से 2 चीजों में बहुत अधिक था, एक था कृष्ण नाम में और दूसरा था चैतन्य महाप्रभु के जो लीला चरित्र है उसमें उनका अनुराग बहुत अधिक था। तो ऐसे उस समय के विश्व के सबसे बड़े विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका जब आयु भी दीक्षा लेने की आयु आई तो उनके जो पिता है वो महान आचार्य हैं, भक्तिनोद ठाकुर को दीक्षा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, जो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज है जिन्होंने अपना अधिक समय वृंदावन में बिताया, और एक बार जब वो नवदीप आए गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने कहा कि जो वृंदावन है वहां कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना बहुत कठिन है, वहां लंबा समय चाहिए, लेकिन वास्तव में किसी को कृष्ण प्रेम अनुकूल करना है, सरलता से अपने जीवन में धारण करना है, उस व्यक्ति के लिए नवदीप धाम सरल है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधक के लिए या भक्तों के लिए 2 धाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है नवद्वीप और दूसरा है जगन्नाथपुरी, साधना के लिए बेस्ट है, क्योंकि वृंदावन धाम तो आस्वादन करने के लिए है, भक्ति रस आस्वादने नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए ब्रज है, वृंदावन धाम है। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जब नवदीप में पहुंचे तो उस समय भक्तिनोद ठाकुर ने जालंगी के तट पर स्वानंद सुखद कुंज नाम का अपना एक घर बनाया था, वहां भक्तिनोद ठाकुर निवास करते थे। तो जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज वहां आए, जिन्होंने व्याघ्र की टोपी पहनी थी, उनके हाथ में एक बास्केट था और एक जप माला थी, तो उस समय पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको देखा और भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि तुम वास्तव में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करो। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो अनपढ़ थे, उनको अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता था। एक ऐसा विद्वान, विश्व का सबसे बड़ा विद्वान, जो किनके चरणों में समर्पित करना चाहते थे भक्तिनाथ ठाकुर, ऐसे व्यक्ति के जो वास्तव में अनपढ़ है लेकिन भगवत भक्ति में अनपढ़ नहीं है। भगवत भक्ति ये सब बाहरी चीजों से परे हैं, ज्ञान, धन, मान, बल, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, इन सब चीजों से परे हैं, नॉलेज, स्किल्स, इन सब चीजों से परे हैं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। तो ऐसी भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के हृदय में निवास करती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे दीक्षा दो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते नहीं नहीं, मैंने ना एक को दीक्षा दी थी, उसने धोखा दिया है। एक को मैंने दीक्षा दी थी, उसने धोखा दिया है, और मैंने अभी व्रत लिया है कि आगे किसी को दीक्षा प्रदान नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु का जो कार्य बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहूंगा तो आपसे ही, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में गिर गिर के पड़े, हाँ उन्होंने दीक्षा प्राप्ति के लिए सब कुछ किया, तो वैसे ही ये बहुत पीछे लगे। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं ना महाप्रभु से पूछूंगा और कल तुम्हें बताऊंगा कि मैं दीक्षा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो फिर दूसरे दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए, रोते हुए उनके चरणों में गिरते और कहते गुरुदेव आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। वो कहते मैं ना भूल गया, महाप्रभु को पूछना भूल गया, कल पूछूंगा। तो ऐसे लगभग कई दिन बीतते हैं। जैसे रामानुजाचार्य उनके जो गुरु हैं गोष्ठीपूर्ण के पास 17 या 19 बार गए थे, और वो भी इसी प्रकार से बताते थे नहीं नहीं बाद में देता हूं हरिनाम। तो ऐसे कई बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके पास गए, हाँ 3 बार लगभग गए, और उसके बाद फिर देखा कि ये बहुत दृढ़ है। उन्होंने सोचा कि मेरे ऐसे विद्वता का, मेरे ऐसे युवा अवस्था का, इन सब चीजों का क्या लाभ यदि आप जैसे महान वैष्णव मुझे शरण प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी शरण ग्रहण करने में ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरण ग्रहण करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को त्याग करना चाहता हूं, त्यागना चाहता हूं यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर, कि मैं रो रो कर अपने शरीर को त्यागूंगा। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूं। तो 1900 जो साल था उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उन्होंने दीक्षा दी, उनका पहला और आखिरी शिष्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और ऐसे शिष्य देखो, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने एक शिष्य दिया और वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी एक शिष्य दिया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोभाव था जिस दिन, वो शरीर त्यागने वाले थे, तो उस दिन कहा कि कोई मेरा शिष्य नहीं है, सब मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे अनुयायी हैं, लेकिन मेरा शिष्य कोई नहीं है। ऐसे वचन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, क्योंकि अनुयायी में और शिष्य में अंतर है। तो वास्तव में उन्होंने ऐसा शिष्य दिया चंद्रमा के समान श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने सारे जगत जो तपा हुआ है तीन तापों से उन सबको शीतलता प्रदान की। तो ऐसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कभी अपने चरण किसी को छूने नहीं देते थे। सुबह सुबह स्वानंद सुखद कुंज जो गोद्रम द्वीप का एरिया है वहां वो निवास करते थे, तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज चद्दर कपड़े लेके अपने पांव में गोल गोल घुमा के बात देते थे, क्योंकि उस समय ऐसे कई लोग थे जो जाकर सुबह पर साधुओं के चरण छूते थे कि आशीर्वाद मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी। कृपा क्यों चाहिए? भौतिक भोग करने की सुविधा प्राप्त हो जीवन में। तो वो कहते थे कि मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूं, आशीर्वाद गुरु बहुत सारे पड़े हैं, अपना हाथ ऐसे करते हुए और पाव लंबे किए हुए हैं, जाओ उनके पास, जाओ उनके चरणों उनके का स्पर्श करो। वो कभी अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके पास आते थे हाँ, तो वो अपने चरण आगे करते थे, उनके चरण अपने भक्ति सिद्धांत के सर में रखते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके चरणों को स्वीकार करते थे। तो ऐसा अनुराग और ऐसी निष्ठा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के प्रति थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक दिन अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण की धूलि हाथ में लेकर कहते हैं कि ये जो धूलि है मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरणों की, ये इतनी शक्तिशाली है इसका कण भी, इसका एक छोटा सा कण भी बद्ध जीव के सर में गिरेगा तो वो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा। इतना शक्तिशाली है और वास्तव में ये निष्ठा है अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, जो निष्ठा चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के प्रति दिखाई थी। जब चैतन्य महाप्रभु गया में वो दीक्षा उन्होंने प्राप्त की और जब वापस आ रहे थे तो कुमारहट जो ईश्वरपुरी का गांव है उस गांव में आए और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रोदन करने लगे, उस गांव के धूलि में लोटपट होने लगे और वहां की धूलि उठाकर चैतन्य महाप्रभु सर में डालने लगे, अपने मुंह में डालने लगे कि कहने लगे कि ये बहुत पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ मेरे आध्यात्मिक गुरु ने जन्म ग्रहण किया है और महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के गांव का जो उनका जन्म स्थान का धूलि है वो अपने चदर के हम उत्तरीय में बांध के अपने साथ लेके आए और उसको रोज हम उसको ग्रहण करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो अनुराग है अपने अध्यात्म गुरु के प्रति बहुत अधिक था और इसी को हम देखते हैं सफलता का रहस्य। यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु दश दे कथिता ही अर्था प्रकाश शक्ति महात्मना। वास्तव में जिस भक्त का अनुराग अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति है और उतनी मात्रा में कृष्ण के प्रति, तो सारे शास्त्रों का जो सार है वो उस भक्त के हृदय में प्रकाशित होने लगता है और सदैव अपनी सफलता का जो क्रेडिट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु को देते थे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नाव से जा रहे थे तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति मिला उसने कहा, ओ भक्ति सिद्धांत सरस्वती आप में और आपके गुरु में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं है, एक अंतर जरूर हो सकता है कि मेरे गुरु एक स्थान में होते हैं और मैं कई स्थानों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन आप भूलना मत मेरे गुरु एक बहुत बड़ी जो बैटरी होती है ना जैसे इन्वर्टर होता है, एक स्थान में बैठ के लेकिन सारे जगत को प्रकाश देती है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मेरे आध्यात्मिक गुरु उसी भांति है और वो वास्तव में मुझे प्रकाशित कर रहे हैं जिनके कारण मैं इन कार्यों को कर पा रहा हूँ, इन कार्यों को करना मेरे लिए असंभव है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रेम भी अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए उतना ही प्रगाढ़ था। जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा 10 साल के लिए हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, एक ही समय खिचड़ी खा रहा है या चातुर्माश्य का पालन कर रहा है, चातुर्माश्य के पालन में वो खिचड़ी बनाते थे जिसमें ना मीठ है ना मिर्च है नमक आदि नहीं, और वो खाते भी थे कैसे, भक्ति सिद्धांत महाराज खुद कुकिंग करते थे और उसको जमीन में डालते थे, कोई प्लेट नहीं, दोनों हाथ को पीछे रखते थे और अपने मुंह से उसको ग्रहण करते थे, ये तपस्या थी और हरि नाम को निरंतर लेते रहते थे। जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कभी कभी आके देखते थे तो कहते वो उनको अपना शिष्य या दास नहीं कहते थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहते थे प्रभु है, ये जो भक्ति सिद्धांत मेरे प्रभु को देखकर मुझे रूप और रघुनाथ के वैराग्य का स्मरण हो आता है जब इनके वैराग्य को देखते थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को श्रवण करना अच्छा लगता था आपके शिष्य के द्वारा, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती नवदीप में कई स्थानों में बड़े बड़े प्रवचन देते थे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज चद्दर डाल के सर में जाकर सबसे पीछे बैठते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कृष्ण कथा को सुनते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि कृष्ण कथा ही हमारा जीवन है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के घुटने में कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा और आपको बोलना बंद करना होगा। उन्होंने कहा मैं मर जाऊं, मुझे ऑपरेशन करना नहीं है, लेकिन कृष्ण का वर्णन करना मैं त्यागूंगा नहीं। और वास्तव में कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है? कृष्ण प्रेम यही है कि हमारे जीवा से सदैव कृष्ण का गुणगान निकलना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे हरि नाम के द्वारा हम जगत जीवों को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा सुने। कृष्ण कथा हरि नाम की स्वरूप शक्ति है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही पावरफुल आचार्य थे इस परंपरा के, जिन्होंने कई सारे 64 गौड़िया मठों की स्थापना की। और उन्हीं की ये विजन था, उन्हीं का विजन था कि महाप्रभु की जो शिक्षा है वो विदेशों में पहुंचे। इसलिए उन्होंने अपने कई शिष्यों को भेजा था, 2 शिष्यों को लंदन भेजा था, हाँ, जा वो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को फैला सके, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उल्टा डंगा जंक्शन जो कलकत्ता में है वहाँ एक दिन संध्या के समय प्रवचन दे रहे थे, हाँ, तो नरेंद्र नाम का जो युवक है वो दूसरे युवक को अपने साथ लेके आया था, अभय को। और अभय जाना नहीं चाह रहा था उस प्रवचन साधुओं का प्रवचन अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनको पता है बचपन में बहुत सारे साधु अभय चरण के जो पिता हैं गौर मोहन ने बुलाते थे और वो सब कोई गांजा पी रहा है, कोई भौतिक कामों में लगा हुआ है, तो उनको इन साधुओं से एक प्रकार से तिरस्कार था। लेकिन उस युवक ने कहा नहीं नहीं, ये विशेष साधु है, विशेष आचार्य है। जब वो गए वहां और जैसे बैठने वाले थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऊपर से कहा कि तुम तो पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम अंग्रेजी इतना अच्छा जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो? ये सुन के तो अभय पहली बार बैठ ही रहे थे। तो इस प्रकार से गुरु जो महान गुरु है अपने सत शिष्य को पहचानते हैं और सत शिष्य भी अपने आध्यात्मिक गुरु को पहचानते हैं। बल्कि हमें दीक्षा भी नहीं हुए थे, हम सोचते गुरु दीक्षा के बाद जो आदेश देते हैं उनको भी हमने पालन करते हैं, लेकिन यह दीक्षा से पहले जो आदेश दिए गए हैं उनको इतना गंभीरता से लेते हैं। हाँ, शूल प्रभुपाद या अभय चरण और उसकी पूर्ति के लिए अपना जीवन लगाते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिन्होंने इस प्रचार आंदोलन की स्थापना की और उन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन में संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने देखा कि कोई भी क्वालिफाइड नहीं है उनको संन्यास देने के लिए, तो उन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन में मायापुर में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का जो फोटो था उससे उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। हाँ, क्योंकि ऐसे ही संन्यास रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया था, कहा कांचीपुरम में वरदराज, भगवान वरदराज से रामानुजाचार्य ने संन्यास स्वीकार किया था। रामानुजाचार्य ने देखा कि उनकी जो पत्नी है वो भक्ति नहीं कर रही है और भक्तों से वेश करती है, भक्तों को भगाती रहती है। हाँ, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरी बताया करते थे, वो कहते कि इस संसार में हर एक व्यक्ति भयभीत है। हाँ, वो कहते हैं कि इवन पारिवारिक जीवन में भी स्त्री भी भयभीत है, पति भी भयभीत है। स्त्री को भय लगता है कि कोई जो पति है भक्ति ज्यादा करने लगता है, गंभीर हो जाता है, तो सोचती है साधना बन जाए, पूरा फुल टाइम डिवोटी ना बन जाए। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसके लिए कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक भक्त थे जो बहुत वैष्णव से अनुराग रखते थे, वैष्णव की सेवा करते थे, साधुओं की सेवा ही उनका जीवन और प्राण था। तो उस समय एक दिन वो चले गए अपने ऑफिस, तो पत्नी का तो बहुत गुस्सा आता था जब साधुओं को देखते थे, कहते थे मेरे पति को बिगाड़ने वाले यही हैं, वो कभी भी उनको इंटरटेन नहीं करते थे। तो एक दिन वो ऑफिस चला गया और साधु लोग घर आ गए। उन्होंने कहा प्रभु जी है क्या घर? अभी पत्नी ने कहा ठीक है, अभी आए गए तो भगा नहीं सकते डायरेक्टली। उन्होंने कहा हाँ बैठे बैठे वो आने वाले होंगे। तो वो बैठ गए बेचारे साधु, बैठे सोफा में बैठ गए, किचन में जो पत्नी है वो गए, उन्होंने जो चपाती उल्टा करने के लिए जो चिमटा यूज करते हैं उसको लेके आए, लाके साधुओं के सामने जो दूसरा सोफा है उसकी कुशन के नीचे रखने लगे। तो एक साधु ने पूछा, माता जी आप क्या कर रहे हो, क्यों ये रख रहे हो? कहते मेरे जो पति है ना, जब वो घर आते हैं और वो पहले साधु जब आते तो पहले चिमटा ढूंढते कहाँ है, और चिमटे को लेकर गैस पर गर्म करते हैं और फिर साधु उनके नाक पकड़ते हैं, ऐसा उनको बोल रहे थे। तो अभी ऐसे ही उन्होंने सुना और इन्होंने कहा कि अभी वो आने वाले हैं, तो ये भागने लगे। तो वे बेचारे आगे ये भाग रहे थे, इन्होंने देखा अरे घर में साधु आ रहे थे, सेवा हुई कि नहीं हुई, कुछ मांग रहे थे नहीं मांग रहे थे। पत्नी को पूछा क्यों आए थे, कह रहे देखो ये जो साधु लोग हैं ना कुछ भी मांगते रहते हैं, किचन का चिमटा मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, तो कहते तुम चिमटा नहीं दे सकते कृष्ण की सेवा में? तो इन्होंने चिमटा उठाया उन साधु के पीछे दौड़ने लगे, और वास्तव में उन साधु ने पीछे देखा तो और दौड़ने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये की कथा सनातन थे, और वो कहते थे इस प्रकार से हर जीव है वो भयभीत है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रसाद का आंदोलन शुरू किया, उससे पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, हाँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है प्रचार करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़िया मठ की स्थापना की और उन्होंने इस आंदोलन का प्रचार बहुत सुव्यवस्थित रूप से शुरू किया। तो जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर ये सब अप्रकट हुए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत दुखी हो गए। उनके विरह में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना नाम भजन बढ़ाया, भगवत भजन शास्त्र अध्ययन बढ़ाया। उन्होंने कहा क्या लाभ ये महान आचार्यों को मैं अपने जीवन से खो बैठा हूं। जैसे जो गीत हम रोज गाते हैं तिरुभाव तिथि में, जय अमिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हाँ जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन को छोड़कर अपने गांव खेतुरी चले गए थे, और जब नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला कि रामचंद्र कविराज ने बेहद श्रीनिवास आचार्य ने अपना शरीर त्यागा है और प्रमुख वैष्णव शरीर त्याग के चले गए हैं, तो उनका विरह बहुत बढ़ गया। और उनके विरह में ये जो गीत है नरोत्तम दास ठाकुर से मुख से निकलने लगा, जय आनंद। ऐसे ऐसे महान आचार्य जिन्होंने कृष्ण प्रेम का धन लेके आए हैं और उनका संग मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत दुखी थे, उन्होंने अपना नाम भजन बढ़ाया और फिर दिन रात वो भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गंगा के किनारे हरि नाम का जप कर रहे थे वैष्णव के विरह में, तो उसी समय चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवतम का एक पन्ना पेज इस ग्रंथ का हवा से उड़ते हुए आता है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गोद में या पास गिरता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज देखते कि क्या है, वो देखते हैं कि ये तो चैतन्य चरितामृत का पेज है, हाँ जिसमें वो उल्लेख थे, वो श्लोक था, वो दो श्लोक थे जो उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को किया था। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये सनातन तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाकर जो ब्रज भूमि है कृष्ण की लीला स्थली है उसको स्थापन करो, और वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथों का निर्माण करो, और अपने आचरण से सारे जगत को सिखाओ कि कैसे कृष्ण की भक्ति की जाती है, और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करो और प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको पढ़कर आश्चर्यचकित होते हैं, और उस रात्रि को जब वो सोते हैं तो उस रात्रि में सारे आचार्य उनके सपन में आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, पंचतत्व। वो कहते कि भक्ति सिद्धांत उठो उठो तुम बाहर निकलो, हाँ प्रचार करो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट है, ना सपोर्ट है, ना धन है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तुम जस्ट यहां से बाहर निकलोगे तो सारे चीजें तुम्हें अपने आप प्राप्त होगी, हम सारी चीजें तुम्हारे लिए प्रदान करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इन आचार्यों की वाणी जो स्वप्न में उन्हें प्रदान किए थे, हाँ उसके कारण बाहर निकले और फिर प्रचार आदि करने लगे सब स्थानों में। तो देखा गया कि कुछ ही समय में उन्होंने ये जो प्रचार का आंदोलन है हाँ उसको स्थापित किया, और वो बहुत खुश होते थे जब वो अपने शिष्यों को देखते थे कि कोई प्रचार कर रहा है। उनका एक शिष्य नवदीप में जाकर कुछ मैगजीन थोड़ी बहुत बांट के आता था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत आनंद होता था। हाँ भक्ति सिद्धांत महाराज वो कहते थे कि प्रचार करने के लिए हमें सब कुछ यूज करना चाहिए। वो कहते थे आप ऊंट के ऊपर बैठ के जाओ, हाथी के ऊपर बैठ के जाओ, घोड़े के ऊपर बैठ के जाओ, कार में बैठ के जाओ, किस चीज के लिए? प्रचार करने के लिए, लेकिन अपनी सेवा के लिए नहीं। एक बार एक सन्यासी उनका जो सन्यासी शिष्य था, संध्या के समय उन्होंने भेजा उनको जाओ प्रवचन लेकर आ जाओ बड़े प्रोग्राम में। तो ये सन्यासी महाराज चले गए, सन्यासी जो शिष्य था गए, बहुत सारे लोग थे, बड़ा सुंदर प्रवचन लेके आ गए, सब लोग वाह वाह प्रशंसा करने लगे, और लेट हो गए थे, प्रसाद नहीं लिया था। आए और आए तो देखा कि प्रसाद नहीं रखा है, तो क्या रखा है, बहुत ठंडा हो गया है, राइस और दाल कुछ है नहीं। तो इन्होंने कहा जो बाकी ब्रह्मचारी जनों का, जरा मेरे लिए गरम गरम पूरिया बनाओ, हाँ घी में बनाओ और कुछ सब्जियां बनाओ। तो जोर से जो बोल रहा था भक्ति सिद्धांत महाराज ने सुन लिया। भक्ति सिद्धांत महाराज वहां से खिड़की से कहते हैं, वो कहते हैं करी लाम सन्यासी हो ही गेलो विलासी। कहते हाँ सन्यासी बनाया था मैंने इसको, लेकिन ये क्या बन गया है? विलासी हो गया है, भोगी बन गया है। तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज के लिए। तो वो कहा करते थे कि हमने इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया है मनी काउंट करने के लिए। वो कहते हम इस आंदोलन को ज्वाइन किया है हरे नाम को काउंट करने के लिए, हरे नाम का उच्चारण करने के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो महान आचार्य हैं जिन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की थी, और वो बहुत जोर देते थे कि मठ में जो रहने वाले भक्त हैं, और वो कहते थे मठ का मतलब मंदिर का जो वास है वो ब्रज वास है, और मठ में रहने वाले जो भक्त, उन्होंने कहा मठ में वो रह नहीं सकता जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है। भक्तों के बीच में रहना है तो आपके अंदर सहनशीलता का जो गुण है वो अति आवश्यक है, अन्यथा आपका रहना उचित नहीं है। एक बार एक पंडित ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहा कि आपने जो ये गौड़िया मठ का लोगो बनाया है उसमें सारे ट्रेडिशनल चीजों को यूज किया है आपके आंदोलन में, लेकिन एक ही विदेशी चीज आपके आंदोलन में है। वो कहते क्या है विदेशी चीज? वो कहते जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये विदेशी चीज है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जो भी चीज चैतन्य महाप्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो रही है वो ना इंडियन है ना विदेशी है, वो सारी अप्राकृत है, इस जगत की नहीं है। हाँ वो सारी वैकुंठ जगत की चीजें हैं, पूजनीय है, आराधनीय है, वो सेवा के योग्य है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हम जोर देते थे प्रचार के लिए, और अपने भक्तों को भी हम सदैव प्रेरित करते थे। एक बार जब गौड़िया मठ में गोवर्धन पूजा होती थी, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे गोवर्धन पूजा का मतलब है उसमें दो चीजें होने आवश्यक है, हिप्स ऑफ वो कहते थे फूड हो, पहाड़ हो, अलग अलग व्यंजनों के पहाड़ होने चाहिए, और उतनी ही मात्रा में कृष्ण कथा होनी चाहिए। कहने की केवल प्रसाद ही होना चाहिए और कृष्ण कथा नहीं, कहते दोनों कई बराबर एक जैसी होनी चाहिए। तो एक बार एक पंडित आया, बाहर का कोई भक्त था, तो आया प्रसाद ग्रहण करने के लिए फेस्टिवल में, और उस दिन उन्होंने मालपुआ बनाए थे। तो वो जो साधु है भक्त है वो खाते जा रहा था मालपुआ, खाते जा रहा था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का डिसाइपल उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा प्रभु जी मुझे ये बताइए कि ये मालपुआ मालपुआ को आप खा रहे हो या मालपुआ आपको खा रहा है? वो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा छोटा भक्त नहीं, लेकिन बातें कितनी करता है। वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए, भक्ति सिद्धांत महाराज तो सही बोल रहा था। उन्होंने कहा एक भक्त को बहुत आवश्यक है इस चीज पर ध्यान दो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब एक बार उन्होंने जो विग्रह की स्थापना की थी गंधर्व का गिरिधारी, जो आप वहां दर्शन करते हो मायापुर में, और वो वास्तव में उनके स्वप्न में आए थे। जयपुर में उस विग्रह को कोई व्यक्ति बना रहा था और भक्ति सिद्धांत महाराज के स्वप्न में आए। उन्होंने पहला पंडिया में बनाया था और कहा कि मैं आपके स्थान में आना चाहता हूं। वो लेडीज गंधर्व का गिरिधारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहां जाते हैं और उस विग्रह को लेके आते हैं, और आप उस मठ में जाएंगे, मंदिर में देखेंगे मायापुर में कि लेडीज बहुत आगे हैं और उनका हॉल पीछे है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक दिन दूर से ही भगवान को ऐसे बैठे थे एक चेयर में देखते जा रहे थे। उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, तो उनका शिष्य तो लगा ले गुरुदेव ने चश्मा नहीं पहना भगवान को क्या देखेंगे। उन्होंने लगा वो अपना चश्मा लेके जाता है, गुरुदेव ये आपका चश्मा लीजिए ताकि आप किसको देख सकते हो, कृष्ण को देख सकते हो। उन्होंने डांट लगाई, हाँ उन्होंने कहा जो भगवान को देखने के लिए ये चर्म चक्षु की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देखना है तो वास्तव में प्रेमा जन चरित भक्ति विलोचने ना, उसके लिए हृदय में प्रेम चाहिए। और वो प्रेम कैसे आएगा, जब उन्होंने कहा आप महान वैष्णव के द्वारा कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करते हो, तो जिसके द्वारा आपके अंदर सामर्थ्य आता है कि आप भगवान को हम वास्तव रूप में देख सकते हो। तो उन्होंने कहा हम भगवान को देखते नहीं है, भगवान वास्तव में हमें देख रहे हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, और वो भी बहुत दूर से, और गरुड़ जी के स्तंभ के नीचे ऐसे खड़े होकर हाथ जोड़कर। एक शिष्य ने पूछा कि आप क्यों गरुड़ जी के पास खड़े होकर दर्शन करते हो, आप आगे चले जाओ ना, सीधा जाके वहां दर्शन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान जगन्नाथ सदैव अपने भक्तों को देखते हैं, और उनके भक्त कौन है, गरुड़ जी हैं। और इसलिए मैं उनके चरणों का शंकर ग्रहण करना चाहता हूं ताकि वो थोड़ा सा दृष्टिपात मेरे ऊपर भी डाले, और यही वास्तव में भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सीक्रेट है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद के रूप में महान आचार्य प्रदान करते हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है जिसकी स्थापना की पूरे विश्व में। और श्रील प्रभुपाद जब उनके शिष्य उनके पास आते थे तो हमेशा कहते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने यहाँ भेजा है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस आंदोलन का सारा क्रेडिट अपने जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं उनको प्रदान करते थे। तो आज के दिन ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जगन्नाथपुरी में शरीर को त्यागा था, और सुबह के समय में अर्ली मॉर्निंग में, और शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने अपने भक्तों को, जो उनके दो भक्त थे उनके आसपास और युवतियों थे, उनमें से एक युवती को कहा कि आप क्या करो, हाँ एक भजन गाओ। उन्होंने कौन सा भजन गाओ, उन्होंने कहा रूप गोस्वामी का जो वर्णन है नरोत्तम दास के द्वारा, श्री रूप मंजरी मदन, हाँ उस भजन को गाते हैं उनके भक्त। और उसके उपरांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने इस भौतिक देह को त्यागते हैं, और फिर उनके देह को ट्रेन से लाया जाता है जगन्नाथपुरी से हावड़ा लाया जाता है। फिर वहां से एक स्पेशल ट्रेन थी, उस पूरी ट्रेन में केवल वैष्णव थे, और पूरी ट्रेन में महाहरिनाम संकीर्तन हो रहा था, और हर स्टेशन में ट्रेन रुकती थी, हर स्टेशन में हजारों लोग आते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको माल्यार्पण आदि करने के लिए। और वो फिर ट्रेन पूरा दिन लगा उस ट्रेन को कहां पहुंचने के लिए, नायापुर, और फिर वहां उनका जो समाधि है वो स्थापित किया गया। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत प्रैक्टिकल आचार्य थे। एक बार एक शिष्य दूसरे भक्त को कहता है कि जरा वैष्णव गीत गाओ। भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे थे, वैष्णव भजन गाओ। तो उसने कहा तुम ना यशोमती नंदन गाओ। भक्ति सिद्धांत महाराज के तुम्हें अच्छा लगता है, तुम ऐसा गाओ जो कृष्ण को अच्छा लगता है। हाँ, तुम ऐसे गीत गाने के लिए बहुत उत्साहित हो। हाँ, कि राधा कृष्ण प्राण हमारा जुगल किशोर, तुम ये गीत गाओ ना कि हरि हरि विफले जन्म गवाए मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाए। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं हमें तो ऐसे गीत गाने चाहिए। हाँ, वही हमारी स्थिति है। हम तो ऐसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज स्वयं अपने आचरण से शिक्षा देते हैं सारे विश्व को। और आज के दिन हमें इसे प्रार्थना करनी चाहिए। और विशेष रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों को हम बाकी दिनों में अपने आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से अप्रोच करते हैं, लेकिन जब उनका आविर्भाव तिरुभाव होता है उस दिन वो बहुत अधिक उदार होते हैं। उस दिन वो डायरेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आज के दिन उनका तिरुभाव है। आज के दिन हमें उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें श्रील प्रभुपाद के जो आंदोलन है उसमें सेवा करने के लिए। और विशेष रूप से जो हरि नाम है और भगवत कथा है उनमें सदैव अनुराग बना रहे। इसलिए जगदानंद पंडित अपने प्रेम वर्त में सॉन्ग कहते हैं, गीत कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जीने के आ कौन वस्तु नाम। मेरी एक प्रार्थना है कि एक ही प्रार्थना है क्या है कि हे आचार्यगण हे कृष्ण मुझे भक्तों के संग में हरि नाम लेने का अवसर प्रदान करो, भक्तों के संग में कृष्ण कथा और भगवत सेवा करने का अवसर और सामर्थ्य प्रदान करो। इस प्रकार की प्रार्थना हमें उनके चरणों में करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के समवेत।